पैनियम संख्या 13 पानियम की ओर पुनरागमन।
कैसरिया फिलिप्पी से कैसरिया मरितिमा तक मार्ग में रूपांतरण के पर्वत पर एक ठहराव सहित पतरस उन 144,000 का प्रतीक है जो लैव्य व्यवस्था 23 के 22-22 पदों की दो रेखाओं पर निर्मित रेखा में मसीह के समय के पिंतेकुम्मे काल के साथ संबंध में नरसिंगा के पर्व के मार्ग चिन्ह पर पहुँचते हैं। लैव्य व्यवस्था 23 क्रूस पिंतेकुम्मे अपतरस को बुलाने के लिए कॉर्नेलियुस का दूत भेजना, ये सब तीसरे छठे और नौवे पहर के प्रतीकवाद के साथ रेखा पर रेखा रखकर समन्वित किए गए हैं। क्रूस पर तीसरे छठे और नौवें घंटे में मसीह, पेंटेकोस्त के दिन तीसरे और नौवें घंटे में पतरस तथा नौवें घंटे में कॉर्नेलियस और योप्पा में छठे घंटे में तथा कैसरिया फिलिप्पी में तीसरे घंटे में पतरस, इन सब का संबंध दानियेल के 11वें अध्याय के 13 से 15 पदों से है, क्योंकि कैसरिया फिलिप्पी को पानियम भी कहा जाता है। पिंतेकुस्त के दिन पतरस योएल की पुस्तक का उपदेश कर रहा था और जब पतरस ने कॉर्नेलियुस के घराने के समक्ष अपना संदेश प्रस्तुत किया तो पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर उसी प्रकार उंडेला गया जैसा पिंतेकुस्त पर यहूदियों पर उंडेला गया था। यहूदियों के लिए और तत्पश्चात अन्य जातियों के लिए पवित्र आत्मा का ये उंडेला जाना अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की पूर्व छाया था। अंतिम दिनों में ये उंडेला जाना जानता नहापसन के फर्स्ट भाग का नक्शा नहीं थोपे। इसकी शुरुआत जून नवंबर पर एक छिड़काव से होती है और वो अंततः आधी रात की पुकार की उद्घोषणा तक अग्रसर होती है जो रविवार के विधान तक पहुंचती है और फिर तीसरे स्वर्गदूत की तेज पुकार बन जाती है। वहीं और उसी समय पिछली वर्षा बिना माप के उंडेला जाती है।
इसलिए हे सियोन के संतानों, आनंदित हो और अपने प्रभु परमेश्वर में उल्लसित हो, क्योंकि उसने तुम्हें प्रथम वर्षा उचित मात्रा में दी है और वो तुम्हारे लिए वर्षा प्रथम और पश्चात की वर्षा प्रथम मास में बरसा देगा और खलिहान गेहूं से परिपूर्ण होंगे और हौद दाख मधु और तेल से उफनेंगे और मैं तुम्हें वे वर्ष लौटा दूंगा जिन्हें टिड्डी फसल भक्षी कीड़ा इल्ली और पत्ती भक्षी कीड़ा मेरी वो बड़ी सेना जो मैंने तुम्हारे बीच भेजी थी ग्रस लिए हैं। योएल 2:23-4:25।
पतरस उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो 9 गवम से लेकर रविवार के विधान तक के पूर्ववर्ती मध्यम छिड़काव के इतिहास में और साथ ही अंतिम वर्षा में भी सहभागी होते हैं, जो नष्ट कर दिए गए उन वर्षों को जो लाओदिकियाई 7वें दिन के एडवेंटिज्म के वर्धमान विद्रोह की 4 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं पुनर्स्थापित करती है। मंदिर में नवम प्रहर में पतरस ने योएल की पुस्तक में वर्णित वर्षों की पुनर्स्थापना प्रस्तुत की।
इसलिए मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु की उपस्थिति से ताजगी के दिन आए और वो यीशु मसीह को भेजेगा जिसके विषय में पहले तुम्हें प्रचार किया गया था, जिसे स्वर्ग को अपने यहाँ रखना आवश्यक है जब तक कि सब बातों की पुनर्स्थापना का समय न आ जाए, जिनकी चर्चा परमेश्वर ने जगत के आरंभ से अपने सब पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। क्योंकि मूसा ने सचमुच पितरों से कहा, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे भाइयों में से मेरे समान एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहेगा उस सब में तुम उसकी सुनना, और ऐसा होगा कि प्रत्येक प्राण जो उस भविष्यवक्ता की नहीं सुनेगा वो लोगों में से नाश किया जाएगा। हाँ, और शमूएल से आरंभ करके उसके बाद के सब भविष्यवक्ता जितनों ने भी वचन कहा है उन सब ने भी इन दिनों के विषय में पूर्व से भविष्यवाणी की है। प्रेरितों के काम 3:19-24 तक।
पापों का मिटाया जाना अन्वेषणात्मक न्याय में मसीही का अंतिम कार्य है और ये मिटाया जाना परमेश्वर के घराने से प्रारंभ होता है,
क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि न्याय परमेश्वर के घर से आरंभ होना चाहिए। और यदि वो पहले हम ही से आरंभ होता है तो जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते उनका अंत क्या होगा, और यदि धर्मी कठिनाई से उद्धार पाते हैं तो अधर्मी और पापी कहाँ ठहरेंगे। अतः जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपनी आत्माओं की रखवाली उस विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता को सौंप दें। 1 पतरस 4:17-19।
पतरस ने पेंतेकोस्त के दिन और समुद्र तट पर स्थित कैसरिया में कुर्नेलियुस के घर पर यह समझ लिया कि योएल की पुस्तक पूरी हो रही थी। पेंतेकोस्त उस रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है जब परमेश्वर के घराने का न्याय समाप्त हो चुका होता है और फिर वही न्याय अन्य जातियों की ओर बढ़ता है। रविवार के कानून के समय पतरस का संदेश वही संदेश है जो मध्य रात्रि के आह्वान के आगमन के समय उद्घोषित किया गया था। अल्फा की उद्घोषणा उस भविष्यवाणी के काल का आरंभ है जो ओमेगा की उद्घोषणा पर समाप्त होता है। पतरस उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो संदेश का प्रचार करते हैं, और संदेश अपनी सामर्थ्य प्राप्ति के साथ आरंभ होता है जो इस्लाम के गधे के बंधन के खोले जाने से चिह्नित होता है। वो गधा मध्य रात्रि के आह्वान के आरंभ को चिह्नित करने के लिए खोला जाता है और रविवार के कानून के समय फिर से उसे खोला जाता है जो मध्य रात्रि के आह्वान का समापन है। अतः पतरस उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने इस्लाम द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रहार की भविष्यवाणी की थी। मध्य रात्रि के आह्वान के समय पतरस का संदेश उस संदेश का सुधार है जिसने प्रथम निराशा और प्रतीक्षा काल की शुरुआत को चिह्नित किया था। अतः पतरस उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो मध्य रात्रि के आह्वान का संदेश उद्घोषित करते हैं और जिन्होंने उस प्रथम आधारभूत परीक्षा को उत्तीर्ण किया है जो 2024 में आई और 8 मई 2025 को प्रथम अमेरिकी पोप के निर्वाचन के साथ समाप्त हुई। दानियेल 11 के 14वें पद की पूर्ति में तूरियों के पर्व से लेकर पेंतेकुस्त तक का काल लेव्य व्यवस्था 23 में निरूपित पेंतेकुस्त काल की तृतीय तथा कसौटी समान परीक्षा है। तीन स्वर्गदूतों के विषय में बहन व्हाइट द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत भी साधारण गणित ही है। वो बताती हैं कि प्रथम और द्वितीय के बिना तृतीय संदेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि पतरस पेंतेकुस्त के रविवार विधान के समय योएल की पुस्तक का उपदेश करता है, इसलिए वो आधी रात की पुकार के संदेश की घोषणा के आरंभ में भी योएल ही सिखाता है और वही पेंतेकुस्त काल की कसौटी और तृतीय परीक्षा है। इस प्रकार पतरस उस तीन चरणीय पर्ख प्रक्रिया में विश्वास योग्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो 31 दिसंबर 2023 को जब यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य की मुहर खोली गई आरंभ हुई। यदि पतरस तीसरे चरण में है तो अवश्य ही उसने पहले के दोनों चरण चले हैं, क्योंकि प्रथम और द्वितीय के बिना तृतीय हो ही नहीं सकता। 1,44,000 की मुहरबंदी की अवधि 9-11 दिसंबर 1939 से आरंभ हुई और उसने त्रिचरणीय परीक्षण प्रक्रिया का उद्घाटन किया, जिसका निरूपण 9-11 के तुरही आह्वान द्वारा मूलाधारों की ओर लौटने के लिए किया गया और तब 18 जुलाई 2020 की प्रथम निराशा का परीक्षण उपस्थित हुआ। उस इतिहास का तृतीय परीक्षण रविवार का कानून है। 18 जुलाई 2020 को एक भविष्यवाणीगत मरुभूमि आ पहुंची और उसी मरुभूमि काल के भीतर जुलाई 2023 में एक आवाज पुकारने लगी और फिर 31 दिसंबर 2023 को 9-11 के 22 वर्ष बाद यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य का मुहर खुलना आरंभ हुआ। 2023 से लेकर रविवार के कानून तक जब 2300 दिनों की परिपूर्ण सिद्धि होती है का काल इस प्रकार चिह्नित है कि इसका आरंभ 23 से और उसका अंत भी 23 से होता है, क्योंकि 22 अक्टूबर 1844 का बंद द्वार रविवार के कानून पर होने वाले बंद द्वार का प्रतिरूप है। 2300 वर्षीय भविष्यवाणी का प्रतिनिधित्व 2300 में निहित 23-37 लाव द्वारा किया गया है। 1844 पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के इतिहास का अंत था। ये इतिहास 1798 में पहले स्वर्गदूत के आगमन से आरंभ हुआ और 46 वर्ष बाद 1844 में उसका समापन हुआ। वे 46 वर्ष उस मिलराइट मंदिर का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें 1844 में मसीह अचानक प्रविष्ट हुए। मानव देह का मंदिर नर और नारी दोनों में 23 गुणसूत्रों पर आधारित है। इस प्रकार 23 उस कार्य का प्रतीक ठहरता है जिसे मसीह ने 1844 में आरंभ किया। वो कार्य अपने देवत्व का हमारी मानवता के साथ संयोजन करना था। यीशु आध्यात्मिक को स्पष्ट करने हेतु प्राकृतिक जगत का उपयोग करते हैं और 2300 वर्षों के समापन पर 1844 में जो कार्य आरंभ हुआ उसका प्रतीक 23 पुरुष गुणसूत्रों का 23 स्त्री गुणसूत्रों के साथ संयोजन है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है तो वे एक देह बन जाते हैं, और वही विवाह वो है जिसे मसीह ने 1844 में आरंभ किया। 1844 का बंद द्वार रविवार के कानून के बंद द्वार के साथ मेल खाता है, और उस बंद द्वार का प्रतीक 23 है।
31 दिसंबर 2023 से लेकर रविवार के कानून के 23 तक एक ऐसा कालखंड चिह्नित होता है जो अल्फा 23 से आरंभ होकर ओमेगा 23 पर समाप्त होता है। वही इतिहास 9 गब्बा से लेकर रविवार के कानून तक का एक फ्रैक्टल है। 1854 को 23 संख्या द्वारा निरूपित किया गया है, और वो मृतकों के अन्वेषणात्मक न्याय के आरंभ को चिह्नित करता है। 9 गब्बा 11 जीवितों के अन्वेषणात्मक न्याय के आरंभ को चिह्नित करता है, और इसलिए 9 गब्बा 11 भी 23 संख्या को धारण करता है। 9 गब्बा 11 से रविवार के कानून तक का कालखंड अल्फा 23 और ओमेगा 23 वाला कालखंड है। 2023 से रविवार के कानून तक का कालखंड 9 गब्बा 11 से रविवार के कानून तक के कालखंड का एक फ्रैक्टल है, और वहीं 1,44,000 का मंदिर स्थापित किया जाता है। मिलराइट मंदिर 46 वर्षों का एक कालखंड था, परंतु अंतिम दिनों में समय अब नहीं रहा, और एडवेंटवाद के प्रारंभ में मिलराइट के 46 वर्ष एडवेंटवाद के समापन में उसी कालखंड का प्रतिरूप ठहरते हैं, और वो कालखंड 23 से आरंभ होकर 23 पर समाप्त होता है, जिससे मिलराइट संख्या 46 उत्पन्न होती है।
वे तीनों इतिहास एक त्रिचरणीय परीक्षण प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, मिलरवादी नहिगारा से लेकर रविवार के अधिनियम तक, और 2023 से लेकर रविवार के अधिनियम तक। वो इतिहास मिकाएल की तुरही के निनाद से आरंभ हुआ। मिकाएल ने 31 दिसंबर 2023 को मूसा और एलिया को पुनर्जीवित किया, और जब मिकाएल, जो कि मसीह है, पुनर्जीवित करता है तो वो तुरही की ध्वनि के साथ करता है,
क्योंकि स्वयं प्रभु स्वर्ग से एक उद्घोष के साथ, प्रधान दूत के स्वर के साथ और परमेश्वर की तुरही के साथ उतरेगा, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:19।
मिकाएल प्रधान दूत है, और परमेश्वर की तुरही के साथ मिलकर उसकी ही वाणी पुनरुत्थान कराती है, और यहूदा का पत्र हमें बताता है कि मिकाएल ने मूसा को पुनरुत्थित किया।
फिर भी महादूत मूंकाएल ने, जब उसने शैतान के साथ मूसा के शरीर के विषय में विवाद किया, तो उसके विरुद्ध निंदात्मक दोषारोपण करने का साहस नहीं किया, पर कहा, प्रभु तुझे धिक्कारे। यहूदा 1:9।
मसीह ने प्रधान दूत मिकाएल के रूप में 31 दिसंबर 2023 को स्वयं के विषय के प्रकाशित वाक्य की मुहर खोल दी, जब उन्होंने मूसा और एलिया, वे दो गवाह जिनका 18 जुलाई 2020 को वध किया गया था, को पुनर्जीवित किया। तब अल्फा बाह्य नींव परीक्षा आ पहुंची। 9:11 के समय जो स्वर्गदूत उतरा था, उसने विश्वास योग्यों को मिलरवादी आधारशिलाओं की ओर लौटने के लिए बुलाते हुए यिर्मयाह का नरसिंगा फूंका, और उसके समांतर मिकाएल का नरसिंगा आधारशिलाओं की परीक्षा का प्रारंभ किया। यह परीक्षा दानियल 11:11 में निरूपित है, जहां 13 लोगों के लुटेरे बाह्य दर्शन की स्थापना करते हैं। मिलरवादियों ने यह पहचाना कि इस पद की पूर्ति रोम ने की, और उसी ने उस दर्शन की स्थापना की। 8 मई 2025 से कोणशिला और आधारशिला पर मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। 1996 के 30 वर्ष पश्चात, जब 1989 में जिसकी मोहर खोली गई थी, उस संदेश को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। 33 दिसंबर 2025 को जिसकी मोहर खोली गई थी, उस संदेश के औपचारिककरण की प्रक्रिया आरंभ हुई।
1985 के संदेश का 1976 में औपचारिककरण, उसके ऐतिहासिक प्रतिपाद्य के 1776 में है आगमन के 220 वर्ष बाद आया। 2023 में मुहर का खुलना, 11 सितंबर 2001 को इस्लाम के भविष्य सूचक प्रकटन के द्वारा 1976 के औपचारिककरण की पुष्टि होने के 22 वर्ष पश्चात हुआ। पत्रस इस पवित्र इतिहास के संदेशवाहकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो आधार और मंदिर दोनों परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं। मंदिर की परीक्षा में 18 जुलाई 2020 के
असफल संदेश का संशोधन सम्मिलित है। 1989 के संदेश का 1996 में औपचारिक रूप दिए जाने के 30 वर्ष बाद मंदिर की परीक्षा में नैशविल टेनेसी पर एक इस्लामी आघात के संदेश को पहले सुधारना और फिर उसे पुनः उद्घोषित करना भी सम्मिलित है। 1989 के संदेश के औपचारिकीकरण का प्रतिनिधित्व 1996 में टाइम ऑफ द एंड नामक पत्रिका के प्रकाशन द्वारा हुआ। उस पत्रिका में दानियेल अध्याय 11 के अंतिम 6 पदों का विवेचन था और उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के विधान की पहचान की गई थी। देवीय प्रबंध से वर्षों पूर्व ही फ्यूचर फॉर अमेरिका नाम दिया जा चुका एक निष्क्रिय सेवा कार्य उसके पूर्व निदेशकों द्वारा, जिनके पास 1989 के संदेश का कोई प्रकाश न था, हमारे सेवा कार्य को सौंप दिया गया।
1996 में हमारी सेवकाय का नाम फ्यूचर फॉर अमेरिका रख दिया गया और एक प्रकाशन प्रकाशित किया गया जिसमें वो संदेश प्रतिपादित किया गया जिसने अमेरिका के भविष्य की पहचान दानियेल 11 के अंतिम 6 पदों में निरूपित रूप में की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1776 में अपना भविष्य सूचक उदय आरंभ किया था और 22 वर्ष बाद 1798 में अंत के समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने बाइबिलीय भविष्यवाणी के 6ठे राज्य के रूप में अपनी भूमिका आरंभ की। 1786 में 22 उरंट 200 वर्ष बाद 1986 में संयुक्त राज्य के संबंध में संदेश को औपचारिक रूप दिया गया। 1786 से 322 वर्ष और उस बिंदु से 1788 में 1797 वर्ष बीतते हैं जिन्होंने 1831 में अपना पहला सार्वजनिक कथौना प्रवचन प्रस्तुत किया। किंग जेम्स बाइबल के प्रकाशन के 1022 वर्ष बाद एडवेंटवाद का आरंभ और समापन उस संदेश के औपचारिकीकरण पर बल देता है जिसकी मुहर अंत के समय पर खुलती है।
1996 के 30 वर्ष पश्चात अर्थात 2026 में मंदिर की परीक्षा में 18 जुलाई 1998 के संदेश के संशोधन का कार्य सम्मिलित है। अतएव 1995 का अल्फा संदेश जो अंतिम पीढ़ी के लिए था और जिसे 1996 में औपचारिक रूप दिया गया ने 30 वर्षों की एक अवधि आरंभ की जिसका समापन एक संदेश को सुधारने और औपचारिक रूप देने की परीक्षा पर हुआ। वे 30 वर्ष उन 144,000 के याजकत्व का प्रतीक है जो मध्यरात्रि की पुकार के संदेश को औपचारिक रूप देंगे। पतरस उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो द्वितीय ओमेगा मंदिर परीक्षा की अवधि में वो कार्य संपन्न करेंगे।
सिस्टर व्हाइट हमें सूचित करती हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच त्रुटि को प्रवेश करने की अनुमति इस उद्देश्य से देते हैं कि वे अध्ययन करें।
परमेश्वर अपने लोगों को जागृत करेगा। यदि अन्य उपाय असफल हों तो विधर्मिताएं उनके बीच प्रवेश करेंगी जो उन्हें छानेंगी, भूसी को गेहूं से अलग करेंगी। प्रभु अपने वचन पर विश्वास रखने वाले सभी से निद्रा से जाग उठने का आह्वान करता है। इस समय के अनुकूल अमूल्य प्रकाश आ चुका है। ये पवित्र शास्त्रीय सत्य है जो हम पर ही उपस्थित संकटों को प्रकट करता है। ये प्रकाश हमें पवित्र शास्त्र का अध्यवसायपूर्ण अध्ययन करने और जिन स्थापनाओं को हम धारण किए हुए हैं उनका अत्यंत समालोचनात्मक परीक्षण करने की ओर ले जाना चाहिए।
ये कथन उस अनुच्छेद का एक अंश है जिसके साथ ये संपूर्ण लेख समाप्त होगा। लेखों में और हमारी सप्त की जूम बैठकों में दानियेल 11:15 वह पर अपने विचार विमर्श में मैंने कुछ प्रतीकों को लेकर भ्रांति उत्पन्न कर दी और यद्यपि हमने आवश्यक सुधार कर लिए मैं पानियम वह युद्ध जो रविवार के विधान की ओर ले जाता है पर आधारित लेख श्रृंखला को उसके समापन तक ले जाने से भटक गया। अब पानियम पर लौटने का समय है और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास एक अतिरिक्त साक्ष्य रेखा होगी जो कैसरिया फिलिप्पी जो पानियम है में पत्रस द्वारा निरूपित है। अब हम दानियेल के 11वें अध्याय के पद 10 से 16 तक पर अपने विचार विमर्श की ओर लौटेंगे जो पद 40 के गुप्त इतिहास का निरूपण करते हैं। हम सितंबर में रुके थे अतः लगभग 5 माह बीत चुके हैं।
पत्रस अपने भाइयों को ये उपदेश देता है कि वे अनुग्रह में और हमारे प्रभु तथा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ध्यान में बढ़ते रहें। जब जब परमेश्वर की प्रजा अनुग्रह में बढ़ती है, वे उसके वचन की अधिक स्पष्ट समझ निरंतर प्राप्त करते रहते हैं, वे उसकी पवित्र सच्चाइयों में नई ज्योति और सौंदर्य को पहचानते हैं। कलीसिया के इतिहास में सब युगों में ये सत्य सिद्ध हुआ है और इसी प्रकार ये अंत तक जारी रहेगा। परंतु जैसे जैसे वास्तविक आत्मिक जीवन क्षीण होता है, सत्य के ध्यान में उन्नति करना छोड़ देने की प्रवृत्ति सदा रही है। मनुष्य परमेश्वर के वचन से जो ज्योति पहले ही प्राप्त हो चुकी है, उसी पर संतुष्ट होकर स्थिर हो जाते हैं और पवित्र शास्त्र के आगे के किसी भी अनुसंधान को हतोत्साहित करते हैं। वे रूढ़िवादी हो जाते हैं और चर्चा से बचने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर के लोगों के बीच विवाद या हलचल का न होना इस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए कि वे स्वस्थ सिद्धांत को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। ये आशंका करने का कारण है कि वे सत्य और असत्य के बीच स्पष्ट भेद नहीं कर रहे हो सकते। जब शास्त्रों की जांच पड़ताल से नए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते, जब ऐसा कोई मतभेद नहीं उठता जो लोगों को ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास सत्य है, स्वयं बाइबल की खोज करने के लिए प्रवृत्त करे, तब जैसे प्राचीन काल में था, वैसे ही अब भी बहुत से लोग होंगे जो परंपरा से चिपके रहेंगे और जिसे वे नहीं जानते उसी की उपासना करेंगे। मुझे दिखाया गया है कि बहुत से लोग जो वर्तमान सत्य के ज्ञान का दावा करते हैं, वास्तव में नहीं जानते कि वे क्या मानते हैं। वे अपने विश्वास के प्रमाणों को नहीं समझते। वे वर्तमान समय के कार्य का उचित मूल्यांकन नहीं करते। जब परीक्षा का समय आएगा तो जो लोग आज दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, वे जब अपने अपनाए हुए मतों की जाँच करेंगे तो पाएंगे कि अनेक बातों के लिए उनके पास कोई संतोषजनक कारण नहीं है। इस प्रकार परखे जाने तक उन्हें अपनी गहरी अज्ञानता का पता नहीं था। और कलीसिया में भी बहुत से ऐसे हैं जो ये मानकर चलते हैं कि वे जो मानते हैं उसे समझते हैं, परंतु जब तक विवाद उत्पन्न नहीं होता वे अपनी कमजोरी को नहीं जान पाते। जब उन्हें अपने समान विश्वास रखने वालों से अलग कर दिया जाएगा और उन्हें अकेले खड़े होकर अपने विश्वास की व्याख्या करने के लिए बाध्य किया जाएगा, तब उन्हें आश्चर्य होगा ये देखकर कि जिस बात को उन्होंने सत्य के रूप में स्वीकार किया था उसके विषय में उनके विचार कितने भ्रमित हैं। ये निश्चित है कि हमारे बीच जीवित परमेश्वर से हटाव और मनुष्यों की ओर मुड़ाव हुआ है और दैवीय ज्ञान के स्थान पर मानवीय ज्ञान रखा गया है। परमेश्वर अपनी प्रजा को जागृत करेगा। यदि अन्य उपाय निष्फल हो जाएं, तो उनके बीच विधर्म प्रवेश करेंगे जो उन्हें छानेंगे और भूसी को गेहूं के अलग कर देंगे। प्रभु उन सबको जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं नींद से जाग उठने के लिए बुलाता है। बहुमूल्य ज्योति आई है जो इस समय के लिए उपयुक्त है। ये बाइबल का सत्य है जो उन संकटों को प्रकट करता है जो ठीक हमारे ऊपर आ पहुँचे हैं। ये ज्योति हमें पवित्र शास्त्रों के परिश्रमी अध्ययन और उन सिद्धांतगत स्थितियों की अत्यंत सूक्ष्म जांच की ओर ले जानी चाहिए जिन्हें हम धारण किए हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि सत्य के सभी पहलुओं और स्थितियों की प्रार्थना और उपवास के साथ पूर्णतः और दृढ़तापूर्वक जांच पड़ताल की जाए। विश्वासियों को अनुमानों और इस विषय में अस्पष्ट धारणाओं पर नहीं ठहरना है कि सत्य क्या है। उनका विश्वास परमेश्वर के वचन पर दृढ़तापूर्वक आधारित होना चाहिए, ताकि जब परीक्षा का समय आए और वे अपनी आस्था का उत्तर देने के लिए सभाओं के सामने लाए जाएं, तब वे अपने भीतर की आशा के विषय में नम्रता और भय के साथ कारण दे सकें। आंदोलित करो, आंदोलित करो, आंदोलित करो। जिन विषयों को हम संसार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वे हमारे लिए एक जीवित वास्तविकता होने चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिन सिद्धांतों को हम विश्वास के मूलभूत अनुच्छेद मानते हैं, उनकी रक्षा करते समय हम कभी भी अपने को ऐसे तर्कों का उपयोग करने न दें जो पूर्णतः ठोस न हों। वे किसी विरोधी को चुप कराने में सहायक हो सकते हैं, परंतु वे सत्य का आदर नहीं करते। हमें ऐसे सुदृढ़ तर्क प्रस्तुत करने चाहिए जो न केवल हमारे विरोधियों को निरुत्तर करें, वरन अत्यंत निकट और कठोर परीक्षा को भी सहन कर सकें। जिन्होंने अपने को वाद विवाद करने वाले के रूप में शिक्षित किया है, उनके साथ ये बड़ा खतरा रहता है कि वे परमेश्वर के वचन का निष्पक्षता के साथ व्यवहार न करें। किसी विरोधी का सामना करते समय हमारा गंभीर प्रयत्न ये होना चाहिए कि विषयों को ऐसे रीति से प्रस्तुत करें कि उसके मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो, न कि केवल विश्वासी को आश्वस्त करने का प्रयास करें। मनुष्य की बौद्धिक उन्नति चाहे जितनी भी हो, उसे एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अधिक प्रकाश के लिए पवित्र शास्त्रों का गहन और निरंतर अध्ययन आवश्यक नहीं है। एक समुदाय के रूप में हमें व्यक्तिगत रूप से भविष्यवाणी के विद्यार्थी बनने के लिए बुलाया गया है। हमें तत्परता के साथ सतर्क रहना चाहिए ताकि हम उस किसी भी प्रकाश की किरण को पहचान सकें जिसे परमेश्वर हमारे सामने प्रस्तुत करे। हमें सत्य की पहली झलक पकड़नी है और प्रार्थनापूर्ण अध्ययन के द्वारा अधिक स्पष्ट प्रकाश पाया जा सकता है जिसे दूसरों के सामने रखा जा सकता है। जब परमेश्वर की प्रजा निश्चिंत हो जाती है और अपनी वर्तमान प्राप्त ज्योति से संतुष्ट रहती है तो हम निश्चय कर सकते हैं कि वो उन पर अपना अनुग्रह नहीं करेगा। ये उसकी इच्छा है कि वे सदा आगे बढ़ते रहें ताकि उस वर्धित और सतत वर्धमान ज्योति को ग्रहण करें जो उनके लिए प्रकाशित हो रही है। कलीसिया का वर्तमान मनोभाव परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। एक आत्म पर्याप्तता भीतर आ गई है जिसने उन्हें अधिक सत्य और अधिक ज्योति की कोई आवश्यकता न अनुभव करने तक पहुंचा दिया है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब शैतान दाहिनी और बाईं ओर हमारे आगे और पीछे काम कर रहा है, तथापि एक प्रजा के रूप में हम सो रहे हैं। परमेश्वर की ये इच्छा है कि एक वाणी सुनी जाए जो उसकी प्रजा को क्रियाशील होने के लिए जगा दे। स्वर्ग से प्रकाश की किरणें ग्रहण करने के लिए आत्मा को खोलने के स्थान पर कुछ लोग विपरीत दिशा में कार्य करते रहे हैं। प्रेस और व्यासपीठ दोनों के माध्यम से बाइबल की ईश्वरीय प्रेरणा के संबंध में ऐसे मत प्रस्तुत किए गए हैं जिन्हें न पवित्र आत्मा का न ही परमेश्वर के वचन का अनुमोदन प्राप्त है। ये निश्चय ही सत्य है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर उनके समर्थन के लिए एक स्पष्ट प्रभु यूं कहता है कि बिना कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सिद्धांत प्रतिपादित करने का साहस न करे। और जब मनुष्य मानवीय दुर्बलताओं से घिरे हुए आसपास के प्रभावों से कम अधिक रूप में प्रभावित और ऐसी वंशानुगत तथा अर्जित प्रवृत्तियों के धारक जो उन्हें बुद्धिमान या स्वर्गाभिमुख बनाने से बहुत दूर हैं परमेश्वर के वचन को कटघरे में खड़ा करने का साहस करते हैं और ये निर्णय देने लगते हैं कि क्या दैवीय है और क्या मानवीय, तब वे परमेश्वर के परामर्श के बिना कार्य कर रहे होते हैं। प्रभु ऐसे कार्य को सफल नहीं करेगा। इसका परिणाम विनाशकारी होगा, न केवल उस पर जो इसमें लगा है बल्कि उन पर भी जो इसे परमेश्वर की ओर से आया हुआ कार्य मानकर स्वीकार करते हैं। प्रेरणा के स्वरूप के संबंध में प्रस्तुत सिद्धांतों के कारण अनेक मनों में संशयवाद जागृत हो गया है। सीमित प्राणी अपनी संकीर्ण और अल्पदर्शी दृष्टियों के साथ अपने आप को पवित्र शास्त्र की आलोचना करने में समर्थ समझते हैं, ये कहते हुए ये अंश आवश्यक है और वो अंश आवश्यक नहीं है और ईश्वरीय प्रेरणा से रहित है। मसीह ने पुराने नियम के पवित्र शास्त्रों के संबंध में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। उनके समय के लोगों के पास बाइबल का केवल यही भाग था। उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य उनके मनु को पुराने नियम की ओर मोड़ना और वहां प्रस्तुत महान विषयों को और अधिक स्पष्ट प्रकाश में लाना था। युगों से इसराइल की प्रजा अपने को परमेश्वर से अलग करती चली आ रही थी और वे उन बहुमूल्य सत्यों से दृष्टि खो बैठे थे जिन्हें उसने उनके सुपुर्द किया था। ये सत्य अंधविश्वासी रूपों और अनुष्ठानों से इस प्रकार ढंग दिए गए थे कि उनका वास्तविक अर्थ और महत्व छिप गया था। मसीह उनकी दीप्ति को धुंधला कर देने वाले उस मलबे को हटाने आए। उन्होंने उन्हें बहुमूल्य रत्नों के समान नवीन जड़ावट में स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि प्राचीन परिचित सत्यों की पुनरावृत्ति से घृणा करना तो दूर, वे इसलिए आए कि वे अपनी वास्तविक शक्ति और शोभा में प्रकट हों, जिस महिमा को उनके समय के मनुष्यों ने कभी नहीं पहचाना था। स्वयं इन प्रकाशित सत्यों के उद्गाता होने के कारण वे उनके सच्चे अर्थ लोगों के लिए खोल सकते थे और उन्हें उन गलत व्याख्याओं और असत्य सिद्धांतों से मुक्त कर सकते थे जिन्हें धार्मिक अगुओं ने अपनी असमर्पित अवस्था तथा आध्यात्मिकता और परमेश्वर प्रेम से अपनी वंचितता के अनुकूल बनाने के लिए अपना लिया था। उन्होंने वो सब अलग कर दिया जिसने इन सत्यों से जीवन और प्राण शक्ति छीन ली थी और उन्हें उनकी मूल ताजगी और सामर्थ्य सहित फिर से संसार को लौटा दिया। यदि हमारे पास मसीह का आत्मा है और हम उसके साथ सहकर्मी हैं तो जो कार्य वो करने आया था उसे आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। बाइबल के सत्य फिर से रीति रिवाज, परंपरा और मिथ्य सिद्धांतों के कारण आच्छादित हो गए हैं। लोकप्रिय धर्मशास्त्र की भ्रांत शिक्षाओं ने हजारों पर हजारों संशयवादियों और अविश्वासियों को उत्पन्न किया है। ऐसी भूलें और असंगतियां जिन्हें बहुत से लोग बाइबल की शिक्षा कहकर निंदा करते हैं, परंतु वे वास्तव में पवित्र शास्त्र की मिथ्या व्याख्याएं हैं जो पोप सत्ता के अंधकारमय युगों में अंगीकृत की गई थीं। असंख्य लोग परमेश्वर के विषय में एक भ्रांत धारणा पालने के लिए प्रवृत्त किए गए हैं, जैसे यहूदी जो अपने समय की भूलों और परंपराओं द्वारा भटकाए गए थे मसीह के विषय में एक असत्य धारणा रखते थे। यदि वे जान लेते तो वे महिमा के प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। जगत के समक्ष परमेश्वर के सच्चे चरित्र का प्रकाशन करना हमारा दायित्व है। बाइबल की आलोचना करने के स्थान पर हम उपदेश और उदाहरण द्वारा जगत के सम्मुख उसके पवित्र जीवनदायक सत्यों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें, ताकि हम उसके गुण प्रकट करें जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हमारे बीच धीरे धीरे घुसपैठ करती आई बुराइयों ने अनजाने ही व्यक्तियों और कलीसियाओं को परमेश्वर के प्रति श्रद्धा से दूर कर दिया है और उन्हें उस सामर्थ्य से वंचित कर दिया है जिसे वो उन्हें प्रदान करना चाहता है। हे मेरे भाइयों, परमेश्वर के वचन को ठीक वैसा ही रहने दो जैसा वो है। मानवीय बुद्धि ये दृष्टता न करे कि वो पवित्र शास्त्र के किसी एक भी कथन के बल को खटाए। प्रकाशित वाक्य में दी गई गंभीर धिक्कार हमें ऐसी भूमिका ग्रहण करने के विरुद्ध चेतावनी देनी चाहिए। मेरे स्वामी के नाम में मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ, अपने पांव से जूते उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। टेस्टिमोनीज खंड 5 7 7 7 7 अकैन।